हबीब तू ही दर्दन जी दवा।
Listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
Downtown Brampton Gage Park vich nave saal di shuruaat karo simple plan de naal. Event host by comedian Jay Martin. Is de naal hi local artist di na bhullan wali performance nu enjoy karo. Canadian rock band Simple Plan di live performance. Enjoy karo street food ate Gage Park vich free outdoor skating. Naal hi itthe pesh hon wali midnight firework naal saal da ant karo. Jyada jankari layi brampton.ca/newyearseve te jao.
Sodi Furniture Stock Clearance. Saving.
Sale.
Sodi Furniture Stock Clearance.
Everything on floor, to go, warehouse, furniture sale.
Ji haan, Sodi Furniture lagat ki kimat se kam kimat par furniture kharidiye. Furniture ki is sale ka fayda uthane ke liye, Sodi Furniture Showroom 142 Kennedy Road South in Brampton. Huge sale, jo le gaya, so le gaya.
Jo reh gaya, so reh gaya.
Sodi Furniture. Naya Saal Naya Furniture 905-874-7171 Sodi Furniture Store Clearance.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जा ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 या quicktrucklube.com QTL बिकॉज़ वी केयर
Hello everyone. Merry Christmas, Happy Holidays and Happy New Year. I hope you are having a great holiday season with your loved ones and looking forward to welcoming 2025. From my family to yours, we wish you a Merry Christmas, Happy Holidays and a safe, cozy winter and a new year filled with an abundance of peace, prosperity and love.
This message was brought to you by MP Shafkat Ali.
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है.
मेरी सेविंग $350.
मेरी सेविंग सिर्फ $100.
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है. मैंने सेव किए हैं $1,775.
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना.
वही बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा ने. आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं. टर्म एंड कंडीशन अप्लाई. ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बाशक 6472903773 6472903773
ब्रैम्पटन दे विच स्नो दे दौरान कुछ जरूरी हिदायतां. बर्फबारी दौरान सड़क ते पार्किंग दी मनाही है. इस दौरान सारे वाहनां नूं सड़क तो हटा दियो ताकि स्नो प्लो बर्फ नूं साफ कर सके. नहीं तां गैर कानूनी पार्किंग दे दौरान टिकट दित्ती जावेगी, जुर्माना होवेगा अते गड्डी जब्त भी कीती जा सकदी है. ब्रैम्पटन प्लो ट्रैक्टर नाल अपने नेबरहुड विच बर्फ साफ करन दी प्रगति नूं 311 ऐप ते ट्रैक करो. 24 घंटियां विच सारीयां सड़कां साफ कर दित्तियां जाणगियां, पर भारी बर्फबारी दौरान इह सड़कां नूं साफ करन ते 48 घंटे भी लग सकदे ने. अगर बर्फ हटाउण ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਰਫ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ brampton.ca/snow ਤੇ ਜਾਓ.
अदनान अलवी प्रेसिडेंट लाइफ टाइम ग्रुप. अदनान अलवी को कौन नहीं जानता. आप पिछले 15 सालों से अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह अपनी इनकम और अपनी वेल्थ को इंक्रीज किया जा सकता है. आपके लिए हमेशा यूनिक और इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेकर आते हैं. अगर आप आज की बदलती हुई रियल एस्टेट मार्केट से परेशान हैं और चाहते हैं कि आप अपने पैसों को ज्यादा सिक्योर रखते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएं, तो आज अदनान अलवी से प्राप्ता करें 416-301-0249.
दुबई जाना है.
वो क्यों?
बेटी की शादी है. सोने और डायमंड की यूनिक ज्वेलरी की खरीदारी करनी है.
छोड़ो जी, एक दफा चोपड़ा ज्वेलर को विजिट करो, दुबई से बेहतर है. गोल्ड, जड़ाऊ जेवरात, डायमंड, जड़ाऊ डायमंड ज्वेलरी, चूड़ियाँ, कड़े, पेंडेंट, हर जेवर यूनिक है और बेशुमार वैरायटी है. मजे की बात है, डिस्काउंट्स भी बहुत सारे हैं. किस किस का बताऊं? सीइंग इज बिलीविंग.
एड्रेस दें.
1066 एल्बियन रोड, एल्बियन इज़लिंगटन की नुक्कड़ पे. व्हाट अ ब्यूटीफुल कलेक्शन. चोपड़ा ज्वेलर्स 416-744-7534. कनाडा में दुबई, चोपड़ा ज्वेलर्स.
वेलकम बैक, मैं हूं जिशान. आ गए हैं प्रोग्राम लेके. जी हाँ, आप इस बताएंगे आपको. आप सुन रहे हैं रेडियो 770 AM और ये ऑस्ट्रेलिया पर लाइव. जी हाँ, 24 घंटे साल के 365 दिन. eawaz.com ये वेबसाइट है और हमारे फोन पे सुनने का नंबर है 6478724900. मैं जिशान और शेजा जी लेकर आ गई है न्यूज. जी हाँ, इन डेप्थ न्यूज और जो भी डिटेल्स है दुनिया भर में जो भी हुआ है पॉलिटिक्स में, इंटरटेनमेंट में, पाकिस्तान की और इंडिया की सियासत में, और जो अंदर की खबरें वो शहद जी लेकर आई हैं हमारे साथ, तो उनसे तफसील में बात करेंगे. शहद जी, वेलकम टू द शो. कैसे हैं आप?
WS कैसे हो?
बहुत
बढ़िया. हाँ, क्योंकि उसने मुझे कहा आमिर ने कि आपने पूरा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना, तो WS.
तो आप डबल मीनिंग की बात कर.
बिल्कुल.
तो मैं भी डबल मीनिंग की बात करता हूँ.
ठीक है.
आप कितने गोलगप्पे खा सकती?
मैं एक वक्त में
जी
20 से 25 मैं खा सकती हूँ.
अच्छा तो हाँ। वो शायद हो सकता है खातून थी आपकी तरह की
हाँ।
तो वो बीस खा गई
हाँ।
तो
लेकिन उसके अंदर अगर कोई फिलिंग है तो फिर तो जाहिर है कम खाऊंगी, लेकिन अगर वो खाली जरफ देते हैं ना जिसमें पानी डाल के बस देते हैं, वो उसकी मैं बात कर रहा
हूं। चलो गोलगप्पे खा रहे तो उन्होंने कहा कि शोहर से उनका बहुत हुआ कि मैं और खाना चाहती तो उसने थोड़ा नागिन खा और खा। तो उसने
exactly.
एक जो है थप्पड़ लगा तो तुमने कैसे मुझे नागिन का उसने कहा कि मेरे कहने मतलब थे
नागिन खाती जा
तो ये डबल मीनिंग का लतीफा जो है मैं आपके लिए लेके आ रहा।
अच्छा
जी आप बताएंगे क्या न्यूज में।
अच्छा जी आजकल तो न्यूज जो है ना जनाब जरा थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि जरा ठंडी हो रही है, सवाल सिर्फ गर्मा गर्मी तो गाजा में ही चल रही है, बाकी जो है हमारे जो ट्रंप साहब आ गए अब तो रोज एंटरटेनमेंट होगी कोई ना कोई खबर आएगी उसकी, तो वो तो अब चार साल आपके हंसी का तूफान जो है चार साल चले, लेकिन उसके अलावा जो है आज जरा कुछ न्यूज ठंडी है लेकिन सारे इम्पोर्टेंट बहुत है, दुनिया में काफी कुछ बड़ा कुछ हुआ है और मेजर जो है वो आज कुछ मीटिंग्स हुई हैं, कुछ ऐसे हुआ है जैसे कि जिसका कि कल भी हमने आपको जिक्र किया था, तो अब कॉन्टिन्यूएशन है बहुत सारी चीजों की तो वो हम आपको बताएंगे। और आपको पता ही है हम आपको एक होलिस्टिक पिक्चर देते हैं सारा कुछ, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, द वर्ल्ड, फिर उसके बाद जो है वो एंटरटेनमेंट और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स, तो वो इस तरह से आपको एक पूरा पिक्चर उस दिन का मिल जाता है कि क्या है। तो आज जिशान वही है और मैं जो है शुरू करने लगी हूँ।
स्पोर्ट्स आपने कहा तो दो न्यूज मेरे पास भी
अब ठीक है वो उस पे हम बिल्कुल एंड पे जो है
स्पोर्ट्स के सेगमेंट में आपसे भी
बिल्कुल बात करेंगे। ठीक है जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय एमएक्स ट्रैवल। एमएक्स ट्रैवल जो है आपको पता ही है कि हज के पैकेजेस बहुत जबरदस्त दे रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि आपके पास अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इनको आप कॉल कर लें एट 416-599-5200 एंड जनाब ये चोपड़ा ज्वेलर्स पे होते हैं आपके बहुत ही प्यारे चोपड़ा साहब और आप जाएं वो कहते हैं जी बहुत ही एलिगेंट और यूनिक किस्म की स्टाइलिश ज्वेलरी यहां पे मिलेगी आपको, तो अगर आपको आपका कोई भी ओकेजन है उसके लिए आपको चाहिए तो आप इनको जो है वो कॉल कर सकते हैं एट 416-744-7534। विलेज टेस्ट ऑन्टारियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे, दो इनके रेस्टोरेंट्स हैं, जाएं और एंजॉय का मजा लें। वैसे भी जो है अब न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर का कोई पार्टी आपने उधर करना है तो आप कर सकते हो। तो एक तो इनका रेस्टोरेंट जो है मिसेस सागा में, उसका नंबर है 9052323663। दूसरा ओकविल में है, उसका नंबर है 9052262294। और जनाब अदनान अलवी साहब लाइफ टाइम ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, कहते हैं आपका कुछ भी इंश्योरेंस आपको चाहिए तो आप मेरे पास आओ, और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है या कि आरईएसपी आरआरएसपी है कुछ भी ऐसा कुछ है तो आप अदनान अलवी साहब के पास जाओ। और बहुत जबरदस्त इनके पास दूसरे भी कुछ इन्वेस्टमेंट के पैकेजेस हैं तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 416-301-0249। ठीक है जी, चलो जी हम अपने चलते हैं जी खबरों की तरफ। खबरें जो है सबसे पहली खबर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसकी वजह यह है कि कुछ बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं यहां पे। डॉक्टर थ्रीजा टैम जो कि कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हैं, उनका कहना है कि ये H5N1 बर्ड फ्लू और इसके अलावा जो मीजल्स हैं वो बेतहाशा तेजी से कनाडा के अंदर बढ़ रहे हैं। ये जो खासतौर पे बर्ड फ्लू वायरस है इसका पहला ह्यूमन केस इस साल एक टीम में देखा गया था ब्रिटिश कोलंबिया में, और फिर वो काफी बीमार हो गया था और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था अभी नवंबर के महीने में। तो वो कहती है जी कि हम ये बहुत ही क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मीजल्स का वायरस है वो तकरीबन वो कहते हैं जी दो डेकेड्स यानी कि आज से 20 साल पहले जो था वो खत्म हो गया था बिल्कुल यहां पे कनाडा में, लेकिन वो फिर से उसकी रिसर्जेंस देखी जा रही है। और खासतौर पर उन्होंने कहा जी कि मैं ज्यादा कंसर्न जो हूं H5N1 बर्ड फ्लू के लिए हूं क्योंकि यह हाईली पैथोजेनिक एवियन फ्लू है और इसकी कैपेबिलिटी ये शो कर रही है कि ये जो है बड़ी सिवियर इलनेस जो है पैदा कर सकता है, तो हमको बहुत विजिलेंट रहने की जरूरत है और अगर कोई भी बीमार होता है तो फौरन अपना टेस्ट कराए, यानी कि जिसको हल्का सा भी कोई जुकाम का इन्फ्लुएंजा का असर होता है तो वो जाके चेक कराए कि उसको ये तो नहीं है। वो कहते हैं वैसे तो इसका रिस्क बहुत ही कम है बट यूएस के अंदर जो है 65 कन्फर्म्ड केसेज आए हैं ह्यूमन केसेज के और ये सारे लोग फॉरन वर्कर्स थे और इनका जो आया था माइल्ड कंजक्टिवाइटिस और पिंक आई आया था। तो वो कहते हैं जी कि अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ये नहीं पता चल रहा है या ये होया नहीं है कि ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन है, एनिमल से ह्यूमन है, तो फिर भी आप जो हैं यानी सावधान रहें। ठीक है जी, तो वो ही आज कह रही थी। ये एंड ऑफ द ईयर उनका इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने ये सारी बातें की। एक दो मिनट का बड़ा ही प्यारा जो है पीसी पार्टी का, जो ऑन्टेरियो पीसी पार्टी है, उसका एक वीडियो आया है जिसमें देखा जा रहा है कि कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो फोर्ड साहब के पास बैठे हुए हैं और फोर्ड साहब जो है सेंटा क्लॉज बने हुए हैं और वो सेंटा क्लॉज बने हुए कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ना अपने लेटर्स जो हैं वो देख रहे हैं। आप पहचान ही नहीं सकेंगे कि ये डग फोर्ड साहब हैं जब आप इनकी तस्वीर ये देखेंगे। ये दो मिनट का जो वीडियो है ये फोर्ड साहब के ऑफिस ने रिलीज किया है और इसमें देखा जा रहा है कि वो बहुत सारे लेटर्स पढ़ रहे हैं और सेंटा क्लॉज बने बैठे हैं और सामने जो है वो क्रिसमस ट्री नजर आ रहा है। तो इसमें फिर वो जो वीडियो आगे चलती है तो दिखाते हैं कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रमित सरकारिया जो है वो लिख रहे हैं लेटर, उसमें वो कह रहे हैं डियर सेंटा, ऑन्टेरियो के अंदर ट्रैफिक के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गए हैं, रोड्स क्राउडेड हैं, बहुत सारे जैम्स होते हैं, यहां पे ग्रिड लॉक्स होते हैं, तो मैं चाहता हूं मेरा विश ये है कि ये अगले साल में ये जो न्यू ईयर आ रहा है इसमें ग्रिड लॉक बिल्कुल चला जाए ताकि हर कोई अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम एंजॉय कर सके। फिर एनर्जी मिनिस्टर स्टीफन लेचे आते हैं और वो कहते हैं ऑन्टेरियो जो है उसमें जबरदस्त किस्म के एनर्जी के प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर है जो कि क्लीन है और हम चाहते हैं लेकिन के और इस तरह के प्लांट्स आए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर विक फिडेली, लेबर मिनिस्टर डेविड पचीनी, हेल्थ मिनिस्टर सिल्विया जॉन, ये सब भी जो है क्रिसमस के विशेस कर रहे हैं और लेटर्स लिख रहे हैं उसको सेंटा को जो कि फोर्ड साहब हैं। तो इसके अंदर वो यही बातें कर रहे हैं, जॉब्स, इन्वेस्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, स्किल ट्रेड, हेल्थ केयर, इस सब के लिए। और फोर्ड साहब कह रहे हैं, वो टिक करते जा रहे हैं, उनके पास एक विश लिस्ट है, वो कह रहे हैं हाँ ठीक है मैं ये ग्रांट करूंगा करूंगा। और फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो वो ऑन्टेरियो के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं उनका ट्रस्ट और सपोर्ट के लिए और वो कहते हैं जी कि वी विल मेक दिस प्रोविंस स्ट्रांगर इन फ्यूचर और फिर उसके बाद वो कहते हैं जी मैरी क्रिसमस। तो ये बड़ा ही प्यारा है और बड़ा वायरल हो रहा है ये वीडियो, तो आई थॉट वी शुड टॉक अबाउट इट। अच्छा जनाब, लोग जो हैं वो आज तो बिल्कुल ही पागल हुए हुए थे, हम तो जो हैं बेचारे बैठे हुए थे इधर अपने इस स्टूडियो में आपके लिए खरमे तैयार कर रहे थे, लेकिन दुनिया बड़ी पागल जीडीए में हुई है एंड रेस्ट ऑफ कैनेडा ऑल्सो, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो है बॉक्सिंग डे बार्गेन्स जो है वो शुरू हो गई है और बहुत सारे स्टोर जो हैं वो तो टैक्स हॉलीडे भी दे रहे हैं ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट्स जो हैं लोगों को दें ताकि लोग जो हैं शॉपिंग करें। ओबीबी ने अलबत्त अपने एक्स पे कहा था कि बॉक्सिंग डे के जो शॉपर्स हैं वो जो जा रहे थे ट्रोनो प्रीमियर आउटलेट्स में तो उनको बेतहाशा जो है हाईवे के ऊपर रश मिला था, तो वो कह रहे थे कि आप कुछ ऑल्टरनेटिव रूट्स जो हैं देख सकते हैं। रिटेलर्स जो हैं उन्होंने बेतहाशा जो है डील्स की हुई थी, ऑनलाइन भी की हुई थी, लेकिन फिर भी लोग जो हैं सुबह 8 बजे से ही लाइन अप करके स्टोर्स के बाहर खड़े हुए थे और ये जो रिटेलर्स हैं इन्होंने पिछले फ्राइडे से ही जो है ये रोल आउट की हुई थी, ब्लैक फ्राइडे से ही ये सारी डील्स जो है चलाई हुई थी जो कि अभी चल रही थी और टैक्स हॉलीडे भी वो लोग दे रहे हैं बहुत सारे आइटम्स हैं, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि लोग जो है ये 2 महीने December 14 से February 15 तक जो है इनको इंसेंटिव दिया जाए और टैक्स हॉलीडे दी जाए। तो ये जो है कुछ खास तौर पे कुछ चीजों के ऊपर अप्लाई करता है, वीडियो गेम कंसोल्स, कंट्रोलर्स, फिजिकल बुक्स, रेस्टोरेंट मील्स एंड कुछ टॉयज एंड ऑल दैट। लेकिन बहुत सारे जो मैंने देखा था जैसे जो स्क्वेयर वन के स्टोर्स हैं उन्होंने तो कपड़ों वपड़ों के जो स्टोर थे उस पर भी टैक्स हॉलीडे दिया हुआ था, तो आप अगर आपके पास टाइम है तो आप जाके, कुछ तो स्टोर्स आज 9 बजे तक खुले रहेंगे तो आप जाके अभी भी शॉपिंग कर सकते हैं। ट्रंप साहब जो हैं जी उन्होंने आज फिर से एक शगुफा जोड़ा है और ट्रंप साहब ने कहा है जी अपना वो जो इनका सोशल मीडिया अकाउंट है ट्रूथ सोशल, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि कैनेडा के जो हॉकी लेजेंड थे वेन ग्रेट्स्की, उनको मैंने क्रिसमस डे पे जब ये मुझे विजिट करने के लिए आए थे तो उनको मैंने कहा जी कि वो ही इज अ ग्रेट गाय और आइस हॉकी सर्कल्स में काफी ये मशहूर है, तो मैंने उसको कहा था कि तुम कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं रेस करते हो, क्योंकि तुम बहुत इजीली जीत जाओगे और तुम्हें तो कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं है, तुम इतने ज्यादा पॉपुलर हो। लेकिन वो कहते हैं जी कि उन्होंने कुछ खास जो है इंटरेस्ट जो है वो शो नहीं किया था, लेकिन इट्स गोइंग टू बी फन वॉचिंग हिम लॉन्च हिज कैंपेन इन कैनेडा। और वो कहते हैं जी कि मैं ये जो रिटायर्ड हॉकी प्लेयर हैं ये अगर प्राइम मिनिस्टर बने तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग रेस होगी जो कि हम इधर देखेंगे। ग्रेट्स्की के जो एजेंट्स हैं उनको मीडिया ने फिर इस रिपोर्ट के बाद ये जब आया ट्वीट एक्स के ऊपर सॉरी ट्रूथ सोशल पे तो लोगों ने कांटेक्ट किया इनके ऑफिस को, लेकिन कोई भी मीडिया को ग्रेट्स्की का जो ऑफिस है उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसराइल जो है जी उसके तो अब हमले सारे जो है रीजन के अंदर ही बढ़ते चले जा रहे हैं और हुथी रेबल्स जो हैं उन्होंने कहा है जी कि यमन ने के ऊपर जो है यमन के जो हुथी रेबल्स हैं उन्होंने कहा जी कि यमन पे इसराइल ने बेतहाशा एयर स्ट्राइक्स किए हैं। सना जो कैपिटल है और पोर्ट सिटी ऑफ हुदेबा और उनका जो एक इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है सना में उसके ऊपर इन्होंने किया है। और ये इसराइल कहते हैं हमने तब किया है जब हुतीज ने हमारे ऊपर अटैक किया था और सायरन्स जो थे पूरे इसराइल में सुने गए थे। इसराइली मिलिट्री ने कहा है जी कि हमने हुतीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमने अटैक किया है सना में, हुदेबिया में, अल सलीफ में और रॉस कंतिब के अंदर, ये जो पावर स्टेशन है इनका। तो नतन्याहू ने कहा जी कि हुतीज को पता होना चाहिए कि उनका अंजाम भी हमास, हिजबुल्ला और असद की रजीम्स की तरह होएगा, तो उससे उनको सीख लेनी चाहिए। और यूएस मिलिट्री जो है वो भी अब हुतीज के ऊपर कॉन्स्टेंटली पिछले कुछ दिनों से अटैक कर रही है यमन के ऊपर। और हुथी मिसल्स जो हैं अभी रिसेंटली उन्होंने हिट किया था जब इसराइल में, तो इसराइल ने कहा जी कि एक प्ले ग्राउंड के अंदर तेल अवीव में वो गिरा था जिसमें कि 12 लोगों की जो है वो डेथ्स हुई हैं। इसके अलावा जो इसराइल ने अटैक्स किए हैं यमन पे उसमें 9 लोगों की डेथ्स हुई हैं। और इसमें सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इन्होंने जो इसराइल ने अटैक किया उसमें 5 पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट जो हैं वो जो गाजा के हॉस्पिटल के बाहर थे वहां पे जो है इनको मार के मारा है। इसराइल की मिलिट्री कहती है कि ये कोई जर्नलिस्ट वगैरह नहीं थे क्योंकि दुनिया में काफी शोर मचा जब ये जर्नलिस्ट की डेथ हुई, तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं ये मिलिटेंट्स थे और ये पोज कर रहे थे कि ये रिपोर्टर्स हैं। इनकी कार को इन्होंने स्ट्राइक किया था अल औदा हॉस्पिटल में के बिल्टअप में जहां पे के नसीरात रेफ्यूजी कैंप भी है सेंट्रल गाजा में। जर्नलिस्ट जो थे वो कहते हैं जी कि हम उधर आसपास जो दूसरे थे वो कह रहे थे जी कि ये लोग अपना काम कर रहे थे और लोकल जो न्यूज आउटलेट है अल कुद्स टीवी चैनल अल कुद्स टुडे उसके लिए ये काम करते थे। इसराइल कहता है कि ये मिलिटेंट एक जो है वो ग्रुप उसके लिए काम करते हैं। अच्छा, अब जिस वक्त ये सारा कुछ यहां पे चल रहा था और जो यमन के अंदर भी अटैक्स हो रहे थे तो कुछ मीडिया ने फिर थोड़ी देर में अनाउंस करना शुरू किया कि डब्ल्यूएचओ के चीफ कहां हैं, डब्ल्यूएचओ के चीफ कहां हैं। तो वो पता चला कि जिस वक्त इसराइल सना के ऊपर अटैक्स कर रहा था तो डब्ल्यूएचओ के जो चीफ थे वो बिल्कुल सना एयरपोर्ट पे अपनी टीम के साथ ही थे जिस वक्त ये अटैक्स हुए। तो बहरहाल बच गए वो। और कॉन्स्टेंटली नतन्याहू साहब जो हैं यमन पे भी और गाजा में तो वो कर ही रहे हैं और फिर सीरिया और लेबनान में भी, तो कोई उनको रोकने वाला जो है वो नहीं। और अब दुनिया को कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस या कोई क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो है नजर नहीं आ रहे हैं। आज हुआ जनाब 46 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ जीसीसी मिनिस्टीरियल काउंसिल इन कुवैत, और इसके अंदर जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने डिस्कस किया डेवलपमेंट्स इन सीरिया, लेबनान, गाजा। और उन्होंने कहा जी कि सीरिया की सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल जो इंटेग्रिटी है उसको हम बिल्कुल उसके अंदर फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होने देंगे और जो वेस्ट के ये सैंक्शंस हैं ये बिल्कुल उठा लेने चाहिए क्योंकि उसकी इकोनॉमी काफी वीक है और अब तो बशार अल असद भी नहीं है। उन्होंने कहा जी हम इनको बिल्कुल सपोर्ट देंगे और इनके सिविलियंस को भी सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे और लेकिन हम कहते हैं कि आप एक नेशनल रिकंसिलिएशन लेकर आए। इसके अलावा काउंसिल ने जो सीरिया पे अटैक्स है इसराइल के उसको भी कंडेम किया, गोलान हाइट्स पे जो वो सेटलमेंट्स कर रहे हैं वहां पे भी, लेबनान पे जो स्ट्राइक्स कर रहे हैं उसको भी बहुत ज्यादा कंडेम किया। बस कंडेम ही कर सकते हैं और को तो कुछ नहीं कर सकते जाहिर है ये। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये यहां पे हम मिडिल ईस्ट के अंदर कोई हब्स ऑफ टेररिज्म और ड्रग स्मगलिंग ना बनने दें और इनके खिलाफ आप लड़ें। इसके अलावा उन्होंने जीसीसी ने कहा जी कि हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं, आप पता नहीं कितनी दूर खड़े हैं, कितने पीछे खड़े हैं, क्या खड़े हो गए, क्या तीर मार रहे हैं कुछ पता नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी कि इधर परमानेंट सीज फायर होना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो जानी चाहिए और गाजा का सीज एंड होना चाहिए। बस भाईजान आपने कह दिया और इसराइल ने मान लिया, क्या बात है। तो बस ये इंपॉर्टेंट खबर थी क्योंकि जीसीसी की है और सारे आज यहां पे मिनिस्ट्रियल काउंसिल थी तो आपको बताना जरूरी था। बहरहाल बिल्कुल ये बेकार किस्म की मीटिंग है और उसमें कुछ होएगा नहीं। ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज जो हैं जी उन्होंने अर्ज किया है लोगों को कि वो रूरल कम्युनिटी से बहुत दूर इमीडिएटली चले जाएं क्योंकि एक आउट ऑफ कंट्रोल बुश फायर जो है वो फैलती चली जा रही है नेशनल पार्क के एरिया में। ये इतनी ज्यादा फैल गई है कि इसके लिए आज ऑस्ट्रेलिया ने 600 फायर फाइटर्स को बुलाया। इधर ग्रैम्पियन नेशनल पार्क जो कि 240 किलोमीटर वेस्ट ऑफ मेलबर्न है वहां की आग बुझाने के लिए, और उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हॉट और विंडी कंडीशंस थी और उसकी वजह से 55,000 एकर्स जो है वो जल के रह गया है। इसके अलावा 1/3 ऑफ जो पार्क है वो काफी बुरे कंडीशन में है आग लगने की वजह से। उत्थे मतलब अल्लाह दा जरा निजाम देखो, इत्थे जड़ियां बर्फां पै रहीं ते उत्थे जड़ा है गर्मी चल रही है। तो वो कहते हैं जी वैसे तो कोई डेथ्स और घर जो है डिस्ट्रॉय होने की तो खबर नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है लोगों को कि आप जस्ट एज अ मेजर ऑफ प्रिकॉशन आप ये लोग यहां से निकल जाएं। इसके अलावा दूसरी कम्युनिटीज को कहा है कि इनडोर्स रहें, बाहर मत निकलें। और विक्टोरिया के अंदर तो आग जलाने के ऊपर ही पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। उन्होंने कहा जी कि ओपन एयर में बिल्कुल कोई आपने फायर नहीं लगानी है। तो ये जनाब जो है चीजें जरा थोड़ी खराब हो गई हैं वहां पे और काफी आउट ऑफ कंट्रोल है वाकई। अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय लैम्फाय। अगर आपको पहले अपने जल्दी और फौरन और जो है पीस ऑफ माइंड के साथ भेजने हैं तो लैम्फाय से भेजें। और वो कहते हैं जी कि फर्स्ट 100 जब डॉलर्स आप भेजेंगे तो 10% आपको कैशबैक भी मिलेगा। आप रेफरल कोड EZ10 जो है उसको यूज कर सकते हैं। पायल ज्वेलर्स में वो कहते हैं जी बड़ी जबरदस्त 22-कैरेट ज्वेलरी है इंडिया पाकिस्तान सिंगापुर से। तो अगर आपका कोई भी ओकेजन है और आपको उनको ज्वेलरी कोई तोहफे में देना है तो आप उनको जो है दे सकते हैं। असलम भाई को यहां पे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है जी। इनका नंबर है 9057907879 एंड डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे। डॉक्टर नाजिया रहमान बड़ी जबरदस्त डॉक्टर हैं और अब ये इन्होंने एक और जो है डेंटिस्ट्री अपनी खोल ली है। तो ये वो कहते हैं कि आपको किसी तरह का भी दांतों का काम है जो आप उनसे करवाना चाहते हैं तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। इनका नंबर है 9058200900। एंड जनाब चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, इसमें भी बड़े जबरदस्त आप अपने इवेंट्स कर सकते हैं क्योंकि यहां पे जो है ना सिर्फ जबरदस्त खाना है बल्कि गोल्फ कोर्सेज भी हैं बड़े जबरदस्त। तो आप जो है यहां पे इनको कॉल कर लें अगर आपका कोई इवेंट है 9054588888, ठीक है जी। एंड QTL में आप जा सकते हैं और जबरदस्त किस्म के अपने ट्रकों का ओवरऑल करा सकते हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं। सारे जो है नैपनी की लोकेशन खासतौर पर जो इनकी है उसमें बहुत सारे जबरदस्त हाई एंड किस्म के इन्होंने टेक्नीशियंस बिठाए हुए हैं। तो आप जाएं, ऑयल अपना, एयर फिल्टर, ल्यूब्रिकेशन, ट्रांसमिशन ऑयल, कुछ भी कराना है आप जाके कराएं। इनका नंबर है 1519622060। एंड जनाब अगर आपको कपड़े ऐसे चाहिए जो साल हर साल चलते रहे फटे ना, तो फिर आप जाएं स्पीयर एंड मके पे, नई लोकेशन पे वो आ गए हैं। बहुत जबरदस्त इटालियन वुल की चीजें हैं इनके पास, कोट हैं, जैकेट्स हैं। तो अगर आप सर्दी से बचना चाहते हैं कनाडा की तो आप इनके पास जाएं। 775 ब्रिटानिया रोड वेस्ट, यूनिट 7B मिसिसागा में है। इनका नंबर है 9056703388। अच्छा जनाब, आज ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है और उसमें उन्होंने कहा जी कि मिलिट्री कोर्ट ने और 60 लोगों को जो PTI के सपोर्टर्स थे उनको इंडाइट किया है, जिसके के अंदर इमरान खान के नेफ्यू हसन खान नियाजी जो थे वो भी इन्वॉल्व थे इन May 9 राइट्स। उन्होंने आज अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने प्रोमलगेट किया है पनिशमेंट 6 कल्प्रिट्स के लिए जिनके के लिए हमको एविडेंस मिली है, लेकिन ये लोग जो हैं इनको लीगल राइट्स दिए जाएंगे और लीगल प्रोसीडिंग्स इनके ऊपर प्रॉपरली चलाई जाएंगी। इन्होंने कहा जी कि ये इनके पास राइट है कि ये अपील भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहते हैं जी December 21st को इन्होंने पहले सेंटेंस किया था 25 सिविलियंस को टू 2 to 10 years इन रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अटैक्स ऑन मिलिटरी इंस्टॉलेशन इन 2023। और उसके बाद फिर जो है इन्होंने कहा कि जी इनके लीडर्स ने इनको इंसाइट किया था और आज की जो ये दी है उसमें 10 years का रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया गया। अब इन चीजों के ऊपर जाहिर है कि बहुत सारा जो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो इनके ऊपर जो है बहुत लानतान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि कैसे सिविलियंस को तुम लोग जो है ये कर रहे हो इसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स में। उसके इन लाइन विद दैट जो फॉरेन ऑफिस है उसने आज कहा जी कि मिलिट्री कोर्ट्स का जजमेंट जो है इट इज अंडर लॉ इनएक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन लाइन विद द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो फुली कमिटेड है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, तो इसलिए हम कोई भी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करना कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है। मतलब है जिना साहब जिनकी कल अभी हमने बरसी मनाई है और बड़े लंबे लंबे जो है वो फतवे जारी किए गए प्रेसिडेंट साहब की तरफ से भी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से भी, कि हम तो बिल्कुल जिना साहब के वैल्यूज और विजन के ऊपर चलते। ये जिना साहब का ये वैल्यू और विजन था, बेचारे ऊपर देखते होंगे कि किन बदबख्तों को मैं ये मुल्क देकर चला गया हूं। एक तो मुल्क के दो हिस्से कर दिए, जो 4 सूबे अब रह गए उनको भी जो है संभाल नहीं सक रहे हैं और کیوس پیدا کیا ہوا ہے ملک کے اندر، اتنا پوٹینشیل ہے، زیرو انویسٹمنٹ ملک میں اندر آ رہی ہے آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے، اور جو یوتھ ہے بےچارا وہ اتنا ٹیلنٹڈ یوتھ جو ہے وہ اتنا پیچھے سٹون ایج میں اس کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا انہوں نے مدرسہ بل لے کے آنا ہے تاکہ ایف اے ٹی ایف دیاں بدبختیاں وہ آنا ہے، مطلب ہے کہ یہ ملک چلانے کے طریقے ہیں بھائی آپ کے، کوئی خجاسے والی بات، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی ہے شرم ہے آپ لوگوں میں؟ اسٹوپیڈیٹی سے سارے معاملات جو ہیں برباد کرتے جا رہے ہو آپ ملک کے، اور اس کے بعد پھر ہٹ دھرمی بھی ہے آپ کی کہ جی نہیں ہم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے ظاہر ہے جی کہ اس نے بہت زیادہ اس کو کنڈیم کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ورکرز اور سپورٹرز کو جو کیس یہ جو ملٹری کورٹس میں چلایا جا رہا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور سویلینز کو سویلین کورٹس میں ٹرائی کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان اور جو سیکرٹری جنرل ہیں جو عمر ایوب، انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل کام ٹھیک نہیں ہے، اور ہم جو ہیں کانسٹنٹلی کہہ رہے ہیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن بٹھایا جائے جو کہ پروب کرے May 9 کے، اور اس کے ساتھ ساتھ November 22 کا جو کریک ڈاؤن ہے جو پی ٹی آئی کے پروٹیسٹرز کے گیس، ان دونوں چیزوں کا پروب ہونا چاہیے. اور یہ جو جن کو اب جیل ٹرمز دی گئی ہیں تو اب ان کی پوری تعداد جو ہے کل کے 25 اور آج کے 60 ملا کے تو اب یہ 85 ہو گئی ہے. ظاہر ہے کہ EU نے، US نے، UK نے بہت زیادہ ان سینٹنسز کے سینٹنسنگ کے اوپر جو ہے وہ کنسرن شو کیا ہے، اور یہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جتنے آپ کنوکشنز کر رہے ہیں یہ اگینسٹ انٹرنیشنل لا ہے. گوہر ایوب جو ہیں آج جرنلسٹ کے ساتھ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں ان سب کی انڈیویجلی ہم ان کے لیے اپیلز فائل کریں گے، اور اس کے علاوہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی کہا کہ بھئی آپ یہ جو ڈیسائیڈ کریں کیس آف آرمی ٹرائل جو ہے اس کو بھی جلدی سے آپ سالو کریں. مطلب انہوں نے یا آفریدی صاحب نے کی کرنا ہے وہ تو مطلب منہ بنا کے اتنے آ کے بیٹھ جاندے ہیں، اور جو ہے جو ماسٹرز کہتے جاتے ہیں وہ پنڈی بوائز جو ہمارے فیاض بھائی کہتے تھے ان کو پنڈی بوائز کی طرح یس 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 گردنیں لاتے رہتے ہیں، یا اب انکل سیم کی طرف سے کوئی ان کو آرڈرز آئیں گے تو یہ وہ مانیں گے. تو جوڈیشری تو مطلب ہے زیرو پہ بیٹھی ہوئی ہے نا، کوئی نہ ان کے اندر سا ہے، نہ کوئی ان کے اندر جرت ہے، نہ کوئی مورل ان کی ویلیو ہے، تو بس جو ہے وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں بس عدالت میں. وہ عدالت اب کر کیا رہی ہے اس کا کچھ پتا نہیں ہے. اچھا جی، آفٹر میٹنگ عمران خان، پی ٹی آئی کا جو نیگوسیشن کمیٹی ہے وہ اس نے کہا ہے جی کہ ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ اس کا لاجیکل کنکلوژن جو ہے اس میٹنگ کا آ جانا چاہیے January 31, 2025 سے. سنی اتحاد کاؤنسل کے چیف جو ہے صاحب زادہ حامد رضا وہ آج جرنلسٹ کے ساتھ بات کر رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہماری بہت ہی لیجیٹیمیٹ قسم کی ڈیمانڈز ہیں آف جوڈیشل پروب ان May 9 and November 22 پروٹیسٹ، اور جتنے ہمارے انڈر ٹرائل پولیٹیکل پرزنرز ہیں انکلوڈنگ عمران خان ان کو چھوڑا جائے. تو آج ان سے پھر سے جرنلسٹوں نے پوچھا کہ کیا عمران خان اپنے لیے بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میری بات چھوڑو، دوسروں کی بات کرو، لیکن ہم ایز اے پارٹی چاہتے ہیں کہ عمران خان کو بھی چھوڑا جاؤ، کیونکہ اس کو بہت سارے کیسز میں بیل مل گئی ہے اور اس کے اوپر اب کوئی کیس نہیں ہے، تو کائے کو اس کو پکڑ کے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہہ دیا، کیونکہ ان کو ساروں کو ڈر ہے کہ وہ خان اب آ کے پھر ہماری بینڈ بجائے گا. اس نے کہا جی خان صاحب نے کہا کہ میں سب کو معاف کر دوں گا جس کسی نے میرے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا فار دا جو ہے اسٹیبلٹی آف پاکستان. اور پی ٹی آئی کے جو نیگوشیٹرز تھے انہوں نے خان صاحب کو بتایا تھا کہ ہمارے فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہیں وہ کیسے گئے اور اس کے اندر کیا کیا کچھ ہوا، اور پھر ان سے کنسلٹ کیا کہ ہماری فیوچر اسٹریٹجی جو ہے کیا ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک جو ہے وہ سول ڈسوبیڈینس موومنٹ چلائیں گے، وہ ابھی تک ان کی ہولڈ کے اوپر ہے. تو گورنمنٹ نے اور پی ٹی آئی نے پھر جو ہے وہ پہلا سیشن کیا تھا، تو اب سیکنڈ جو راؤنڈ آف ٹاکس ہے 2 جنوری کو ہوئے گا، اور 2 جنوری کے جو ٹاکس ہیں اس کے اندر پی ٹی آئی پھر اپنے ریٹن ڈیمانڈز جو ہے وہ بھی دے گی. تو ایک بہرحال عمران خان نے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک فریم ورک ضرور جو ہے مانگا ہے، تو اسی چیز کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں آج سنی اتحاد کاؤنسل کے چیف صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ ساری بات کر رہے تھے. فیڈرل بیورو آف ریونیو کے جو چیئرمین ہے راشد محمود لینگرل، انہوں نے کہا ہے جی کہ پاکستان کا ٹیکس گیپ جو ہے وہ اب ٹچ کر رہا ہے 7.1 trillion روپیز کو. آج ایک پریس کانفرنس سے بات کر رہے تھے اسلام آباد میں، اور انہوں نے کہا جی کہ انکم ٹیکس گیپ جو ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے 2.4 trillion کو ٹچ کر رہا ہے، اور ہم نے بے شمار لوگوں کو نوٹسز بھیجے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جو نوٹسز بھیجے تھے اس میں سے 38,000 نے تو اپنے ٹیکس ریٹرنز کیے ہیں اماؤنٹنگ ٹو 370 million روپیز، اور ہمارا فوکس جو ہے آن टॉप 5% ऑफ लोग होगा जो कि टैक्सेस चोरी करते हैं और देते नहीं है। और उन्होंने कहा जी कि एक्शन लिया जाएगा, हम वार्निंग देते हैं कि जो लोग टैक्स अपना फाइल नहीं करेंगे उनके खिलाफ। इसके साथ प्रेजेंट थे फेडरल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब भी, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू अली परवेज मलिक, और इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तारर। तो ये इन्होंने, राशिद साहब ने कहा जी कि अब हम डिजिटल इन्वॉइसिंग का प्रोसेस ला रहे हैं और डिजिटल मॉनिटरिंग करेंगे खासतौर पे शुगर इंडस्ट्री की। औरंगजेब साहब ने इस पर बात करते हुए कहा जी कि हमको अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना पड़ेगा 9-10% से 13.5% पे, और ये हमको टारगेट 3 ईयर्स में मीट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि हम जनरेट कर सकते हैं 71 बिलियन रूपीज के टैक्सेस। जाहिर है चोरी इतनी है तो जो है चोरी नहीं रहेगी तो आएंगे फिर। तो इसके साथ साथ जो फिर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से परवेज मलिक साहब थे, उन्होंने कहा जी कि ये टैक्सेस हमको इंक्रीज करने पड़ेंगे फ्रॉम टैक्स रिटर्न्स, नॉट टैक्सेस, टैक्स रिटर्न्स इंक्रीज करने पड़ेंगे 3 मिलियन से 5 मिलियन में बाय, हमने किए हैं, उन्होंने कहा हमने किए हैं बाय अक्टूबर एंड, तो विच इज गुड, लेकिन और ज्यादा जो है करने की जरूरत है। पुष्पा बीबी जो इमरान खान साहब की बेगम है उनको आज इंटरिम बेल दिया गया है इन केस ऑफ पार्टीज नवंबर 26 प्रोटेस्ट। डेप्यूटी जज शब्बीर भट्टी जो हैं उन्होंने इनको बेल दिया है टिल जनवरी 13th अगेंस्ट श्योरिटी बॉन्ड्स ऑफ ₹50,000। बहुत सारे जो केसेस थे उसमें ईच केस में इनके ऊपर 50,000 है, लेकिन केसेस सारे नवंबर 26 से रिलेटेड है। एट अ हियरिंग एट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट इन इस्लामाबाद ये जो थी आज अपनी लीगल टीम के साथ कोर्ट में आई थी, और ये केसेस जो थे रिपोर्ट किए गए थे तरनौल पुलिस स्टेशन में 1 और रमना पुलिस स्टेशन में 3 एफआईआर्स थी। एटीसी पिंडी जो है उन्होंने फिर इनको इंटरिम बेल दी, और इन 32 केसेस रिलेटेड टू दिस प्रोटेस्ट। और खान और बुशरा और बाकी बहुत सारे सीनियर्स पीटीआई के जो ऑफिशियल्स हैं वो बहुत सारा जो है ये फेस कर रहे हैं केसेस रिलेटेड टू पीटीआईज प्रोटेस्ट इन नवंबर इन इस्लामाबाद। तो बहरहाल अब ये क्या केस है अभी तक किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन बहरहाल ये केस जो है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जनाब, आज बैक टू बैक दो बहुत ही अफसोस की खबरें आई हैं। एक तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत की डेथ हुई, और एक हिंदुस्तान में पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत बड़ी वर्ल्ड रिनाउंड ऑथर थी बेप्सी सिद्धवा, उनकी आज डेथ हुई है 86 ईयर्स की एज में ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर। बहुत बड़ी लिटरेरी शख्सियत थी, और उनकी जो नॉवल था आइस कैनडी कैंडी मैन 1991 में उसने काफी धूम मचाई थी, क्योंकि ये सारे का सारा जो हॉरर्स थे 1947 के पार्टीशन के वो इन्होंने सारे जो है वो कोट किए थे, और जैसे किए थे वो इतने खतरनाक तरीके से थे कि लोगों के उसको पढ़ के आंसू निकलते थे। उसके बाद जो इनकी ये जो नॉवल थी इसको फिर अडेप्ट किया था, अर्थ बनाई थी 1998 में बाय इंडो कैनेडियन डायरेक्टर दीपा मेहता, जिसको के बहुत ही क्रिटिकल एक्लेम मिला था। इसका जो थीम था वो बेप्सी सिद्धवा के अपने जो चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंसेस थे उनके ऊपर बेस्ड था, और ज्यादातर बातें जो थी इनके अपने एक्सपीरियंस से थी। शी वॉज बॉर्न इन कराची ऑन August 11, 1938, और इनकी फैमिली जो थी फिर लाहौर जो थी वो रिलोकेट हो गई थी व्हेन शी वाज जस्ट अबाउट फ्यू मंथ्स ओल्ड। और 2 साल की उम्र में इनको पोलियो हो गया था, लेकिन उस बीमारी के होते हुए भी इन्होंने कैसे अपनी राइटिंग और ये चीजें परस्यू की वो बड़ी ही कमेंडेबल है। इनके नोटेबल वर्क्स जो थे वो क्रैकिंग इंडिया 1991, द क्रो ईटर्स 1978, द ब्राइड 1982, एन अमेरिकन ब्रैट 1993, द सिटी ऑफ सिन एंड स्प्लेंडर, राइटिंग्स ऑन लाहौर 2006 जो थी, बहुत ही मशहूर इनके नॉवेल्स हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की कि ईस्ट और वेस्ट के बीच में गैप जो है उसको ब्रिज किया जा सके। इनको पाकिस्तान का हाईएस्ट ऑनर सितारा इम्तियाज 1991 में दिया गया था, मंडेलो प्राइज फॉर फॉरेन ऑथर्स दिया गया था 2007 में, और इनको इंडक्ट किया गया था इन ज़ोरास्ट्रियन हॉल ऑफ फेम। एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी बेप्सी साइलेंस ऑफ माई लाइफ, जिसको के रिलीज किया था अक्टूबर 2022 में बाय सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान ऑन हर लाइफ। ज़ोरास्ट्रियन एसोसिएशन ऑफ ह्यूस्टन ऑफ FEZANA जो थे उन्होंने सेटअप किए थे बेप्सी सिद्धवा लिटरेरी प्राइज इन रिकग्निशन ऑफ हर रोल एज द फर्स्ट इंटरनेशनली रिकग्नाइज ज़ोरास्ट्रियन ऑथर ऑफ पाकिस्तान। तो बहुत बड़ी ये ऑथर थी, और बड़े आज अफसोस की बात है। इसी के साथ साथ आज जनाब जो फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी आज डेथ हुई एट द एज ऑफ 92, और अकॉर्डिंग टू अ पीआर एक प्रेस रिलीज जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली ने निकाली, उन्होंने कहा जी कि इनको एज रिलेटेड मेडिकल कंडीशन था, और उसको इनको मेडिकेशन दिया जा रहा था, लेकिन फिर अचानक से इनको कॉन्शियसनेस इनकी खो गई एट द रेजिडेंस और इनको जो है घर में रिवाइव करने की पूरी कोशिश की गई और फिर इनको रश किया गया मेडिकल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एट एम्स में, यही जो हॉस्पिटल है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में। तो लेकिन इनको बहुत डॉक्टरों के कोशिश के बावजूद भी इनको रिवाइव नहीं किया जा सका। सिंह साहब जो हैं उनके पीछे अब रह गई हैं उनकी बेगम गुरचरण सिंह और तीन बेटियां, और इन्होंने सर्व किया था एज इंडियन प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 2004 टू 2014 और ये बहुत ज्यादा इन्होंने लिबरलाइज किया था इंडियन इकोनॉमी को इन 1990 और बहुत ज्यादा इनकी दुनिया में रिस्पेक्ट थी फॉर हिज इंटेग्रिटी इंटेलेक्ट एंड स्टेट्समैनशिप। और आज सारे ही लीडर्स ने अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में भी पाकिस्तान में भी इनके डेथ के ऊपर बहुत ही ज्यादा अफसोस का इजहार किया है। ही वॉज बॉर्न ऑन सेप्टेम्बर 26, 1932 इन अ विलेज इन पंजाब और फिर इन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से 1948 में किया था और ये बहुत ज्यादा चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान जो है उनको करीब लाया जाए, उनके बीच में जो दूरियां उनको खत्म किया जाए, और इसीलिए इनकी काफी मुलाकातें जो उस वक्त के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब के साथ रहीं और कुछ तो मूवमेंट थी कि भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयां खत्म की जाएं, लेकिन फिर उसके बाद जाहिर है कि आपको पता ही है बीजेपी की गवर्नमेंट आई और फिर उन्होंने तो कहा जी कि हम तो बात ही नहीं करेंगे पाकिस्तान से, तो चीजें काफी फिर डेरेल हुई। कांग्रेस की जो लीडर है प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने आज बहुत ज्यादा स्लैम किया है बीजेपी को ओवर पुलिस एक्शन अगेंस्ट जॉब सीकर्स इन पटना और उन्होंने कहा जी कि बीजेपी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहती है, जो कोई भी उससे जॉब मांगता है उसके खिलाफ ये ऑपरेशन करते हैं। बहुत ज्यादा केओस जो था वो पटना के अंदर हुआ था जब एक पता चला था कि एक क्वेश्चन पेपर लीक कर गया है जिसको कि कंडक्ट कर रही थी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसके ऊपर दुनिया जो है बिफर गई। स्टेट पुलिस जो थी फिर उसने बैटन चार्ज किया इन तमाम जॉब सीकर्स के ऊपर, उसमें जॉब सीकर्स का कहना है कि बेशुमार लोग बहुत गंभीर अंदाज में जख्मी हुए। पुलिस ऑफिसर्स जो हैं इस चीज को डिनाई करते हैं, वो कहते हैं हमने किसी को जख्मी नहीं किया। तो ये जो है इन्होंने प्रियंका गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर कहा कि ये जो यूथ के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है ये हाइट ऑफ क्रूअल्टी है। उन्होंने कहा जी चाहे यूपी है, चाहे बिहार है, चाहे मध्य प्रदेश है, जब भी कभी यूथ अपनी आवाज उठाता है जॉब के लिए या मसलों के लिए तो उसको बहुत ब्रूटली मारा पीटा जाता है। तो उन्होंने कहा जी कि ये अगर ये अपने जॉब्स नहीं मांगेंगे तो अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करेंगे और ये जो इनकी जो पॉलिसीज हैं बीजेपी की उसके ऊपर सवाल नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। इंडिपेंडेंट एमपी जो हैं फ्रॉम पूर्णिया पप्पू यादव, उन्होंने इस सब के होते हुए फिर बिहार बंद का ऐलान किया है ऑन January 1, 2025 और उन्होंने कहा जी कि ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक एग्जाम्स कैंसिल नहीं किए जाएंगे और पुलिस जो है उसको फिर जो है वो कहा गया है कि भई आप ये सारे जो हैं इन सब के खिलाफ केसेस लिखें, तो उन्होंने जो है केसेस अब लिखने शुरू किए हैं। बहरहाल जी वेरी सैड। आम आदमी पार्टी जो है जी उसने अब जो है वो कांग्रेस के साथ पंगा ले लिया है और वो कह रहे हैं जी कि कांग्रेस इज हैंड इन ग्लव्स विद बीजेपी इन दिल्ली। पार्टी के एमपी जो है संजय सिंह, उन्होंने कहा जी कि सीनियर कांग्रेस लीडर अजय मांकन जो है वो बीजेपी की जबान बोल रहे हैं और उन्होंने कहा जी कि 24 घंटे के अंदर अगर कांग्रेस ने इनके खिलाफ एक्शन ना लिया तो हम इंडिया ब्लॉक अलायंस जो है उसको बोलेंगे कि कांग्रेस को इस अलायंस में से निकालो। उन्होंने कहा जी कि ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि बीजेपी को जो भी अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस हैं उसके अंदर उसको फायदा हो सके। और अजय जो हैं उन्होंने वो जो है बीजेपी का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और आम आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं और अब तो उन्होंने हद ही कर दिया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जो एंटी नेशनल कहा है तो उन्होंने क्रॉस को लाइन किया है। उन्होंने कहा जी कि ये हमने अलायंस बनाया था कांग्रेस के साथ हरियाणा में लेकिन वो चला नहीं था तो हमने अकेले ही कंटेस्ट किया, लेकिन सारी कैंपेन के बीच में एक भी लफ्ज हमने कांग्रेस के किसी लीडर के खिलाफ कोई अनपार्लियामेंट्री बात नहीं की। तो ये जो अब लिस्ट लेकर आई है कांग्रेस ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में बनी है। इसके साथ साथ दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर हैं आतिशी वो भी ये न्यूज कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह के साथ एड्रेस कर रही थी मीडिया को। उन्होंने कहा जी कि आम आदमी पार्टी को जो मिली थी ये रिपोर्ट कि बीजेपी फंडिंग कर रहा है और 1100 रुपए जो हमने कल आपको खबर सुनाई थी कि औरतों को दे रहा, तो अब हमने खबर आई है कि ये कांग्रेस के कैंडिडेट्स को भी फंड कर रहे हैं इंक्लूडिंग संदीप दीक्षित। और वो कहते हैं जी कि उसको ये न्यू दिल्ली का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है केजरीवाल के अगेंस्ट اس میں یہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں جو کہ بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. بی جے پی نے کہا جی تم اتنے عرصے سے یہاں پہ رول کر رہے ہو تو تم نے ایسے کون سے کو بڑے تیر مار دیے ہیں, کون سی ایسی اچھی چیزیں یہاں پہ کی ہیں جس کے اوپر عام آدمی پارٹی نے کہا جی کہ ہم نے جو کیا ہے وہ سب کو دکھتا ہے, آپ دیکھیں اور پھر اس کے بعد بات کریں. جس وقت آپ کے پاس یہ تھی یا کانگریس کے پاس تھی دلی تو اس میں ایسے پالیسیز نہیں تھے. تو پائی جان کافی چیزیں بھیڑے کے گئی ہیں, یہی کیفی بھیڑے گئی ہیں ہندوستان میں. اور جناب پاکستان کی بڑی مشہور ایکٹریس ہانیہ عامر جو ہیں, جو ابھی نظر آئی تھیں کبھی میں کبھی تم میں, تو وہ جو ہیں وہ ڈیلس میں تھیں اور پھر پتہ چلا کہ میٹ اینڈ گریٹ فینس سے کرنے والی ہیں اور پھر اچانک وہاں سے غائب ہو گئیں. تو ان کو فینس جو ہیں انہوں نے بڑا کرٹیسائز بھی کیا اور کہا کہ بھئی واٹ از دس. تو آج انہوں نے جو ہے اپنے جو انسٹا سٹوریز ہے اس کے اوپر انہوں نے لکھا, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے بیک سٹیج اور ہم کچھ کچھ فینز آ رہے تھے جن سے ہم مل رہے تھے, تو اچانک ایک آرگنائزر جو میں سے ایک بندہ جو ہے وہ آیا ہے اور اس نے جو میری فیمیل مینیجر تھی اس کے ساتھ بدتمیزی کرنی شروع کر دی. اس کے بعد ہم پھر بھی ہم جو ہے فوٹوز جو ہیں بیک سٹیج دیتے رہے فینز کو, لیکن پھر یہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے گندی گندی باتیں کرنی شروع کر دی اور پھر اس نے سیکیورٹی پروٹوکالز جو ہیں ان کو بھی کہا کہ یہ ختم کرو اور وربلی ہم کو اسالٹ کیا. تو جسٹ بیکاز ہم ویمن ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میل ڈومینیٹڈ فیلڈز کے اندر آپ ہمارے ساتھ جو بھی کرنا چاہیں گے وہ کریں گے, آپ کو ایسا رائٹ نہیں ہے کہ آپ ہمارے اوپر شاؤٹ کر سکیں یا بدتمیزی کریں. تو ہم خود اگر اپنے خلاف سٹینڈ نہیں لیں گے تو کون لے گا, اپنے لیے یعنی کہ خلاف نہیں اپنے لیے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ جرنلسٹ جو ہیں ان کا بھی تھوڑا انٹیگریٹی شو کرنا چاہیے, بنا جانے ہوئے ون سائڈڈ سٹوری کے اوپر آپ اتنے بڑے بڑے سٹوریز بنا دیتے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, اور فیمیل آرٹسٹ جو ہیں ان کے اوپر انگلیاں اٹھانا آپ شروع کر دیتے ہیں, آپ کو اصل وجہ جو ہے ایکچوئل کاز آپ کو معلوم نہیں رہتا ہے, تو اس کو پہلے آپ فائنڈ آؤٹ کیا کرو. تو انہوں نے کہا جی لیکن تمام جو فینس جو بڑے ڈس اپوائنٹڈ تھے انہوں نے کہا جی کہ میں ایچ ون آف یو جو ہے میں سب سے پیار کرتی ہوں اور میں بڑا سوری ہوں کہ اگر یہ سب چیزیں ایسے خراب طریقے سے اینڈ کی. سلمان خان صاحب جو ہیں جی وہ اب کہہ رہے ہیں کہ کل جو ہے سلو بھائی کی برتھ ڈے ہے اور کل جو ہے یہ آئے گا سکندر کا ایک ٹیزر, لیکن آج جو ایک پوسٹر آیا ہے وہ بڑا ہی انٹینس ہے, اس کے اندر یہ بڑے انٹینس لگ رہے ہیں اور کالے سے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور جو ہے ایک بڑی انٹینس قسم کی ان کی لک دیکھی جا رہی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں سی یو اگین کل صبح ٹھیک 11:07 پر ٹیزر ٹمورو. تو لوگ جو ہیں وہ بس صدقے جا رہے ہیں سلو بھائی کے, اور بڑی مچ ویٹڈ فلم ہے جی یہ سلو بھائی کی, تبھی جیسے ہی آئے گی لوگ کہتے ہیں ہم دیکھیں گے. اور جناب آپ کو پتا ہی ہے شردھا کپور بڑی مشہور ہو گئی ہیں اپنی استری ٹو کی جو وہ چل رہی ہیں, سو استری ون اور سی ٹو جو فلمیں آئی تھی اس کی وجہ سے کوئی بھی لڑکے کا کرش ہو سکتی ہیں. لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے پروپوز کیا تھا ورن دھون کو اور اس نے ان کو ریجیکٹ کیا. ہیں جی یس یو ہرڈ اٹ رائٹ, ورن دھون نے ان کو ریجیکٹ کیا تھا. تو ورن دھون ابھی جب اپنی فلم بیبی جان کی پروموشنز کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا یہ ہم نے سٹوری بڑی آدھی وادی سنی ہے تو پورا سناؤ کیا ہوا تھا. کہتے ہیں ہاں اس نے یہ مجھے ماؤنٹینس پہ لے کر گئی اور اس نے کہا کہ یہ مجھے بہت پسند کرتی ہے لیکن میں نے اس کو ریجیکٹ کیا. تو جرنلسٹوں نے پوچھا کیوں کیوں, تو وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آئی ایم ناٹ انٹو گرلز. کہتے ہیں ہم جانتے تھے ایک دوسرے کو, اس کی 10th برتھ ڈے جو تھی پھر اس وقت آئی اور پھر اس نے ایک فراک پہنا ہوا تھا اور تین چار لڑکے جو تھے وہ میڈلی ان لو ود ہر تھے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, ظاہر ہے کہ وہ سارا پلان شردھا نے ہی بنایا ہوگا, تو شردھا کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ کیا تم اس کو لائک کرتے ہو, تو میں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کرتا ہوں, میں تو صرف یہاں پہ آیا ہوں ڈانس کمپٹیشن ون کرنے کے لیے. تو لڑکوں نے کہا نہیں نہیں تم بولو کہ تم اس کو پسند کرتے ہو. میں نے کہا بالکل نہیں میں بولوں گا کیونکہ میں کرتا ہی نہیں ہوں. تو کہتے ہیں پھر ان لڑکوں نے پکڑ کے مجھے میرا پیٹا ہے جی, ایسے ہوا بیچارے کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں اس نے مجھے پٹوایا. اچھا جناب ساؤتھ افریقن فاسٹ بولرز جو ہیں انہوں نے تو رپ کر دیا آج پاکستانی بیٹرز کو اور بنڈل کر دیا پاکستان کو 211 پہ آن اوپننگ ڈے آف فرسٹ ٹیسٹ آف سیکنڈ ٹو میچ سیریز ایٹ سپر اسپورٹ پارک سینچورین. انہوں نے جو ہے سب سے پہلے ساؤتھ افریقہ نے آؤٹ کیا پاکستان کے خرم شہزاد کو جو ہے وہ, اور جو ہے یہ انہوں نے جو ہے جو ٹونی ڈی سورزی جو تھا اس نے ان کو آؤٹ کیا ان تھرڈ اوور. رائن رکلٹن جو ہے انہوں نے پھر جو ہے نہیں نہیں سوری آئی ایم گوئنگ الٹا لیکن اس کے بعد جو ہے میں کہہ رہی ہوں کہ ساؤتھ افریقہ کو بھی بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ پاکستان کے خرم شہزاد نے آؤٹ کیا اوپنر ٹونی ڈیسورزی کو تھرڈ اوور میں. اسی طرح رائن نکلٹن کو بھی جس نے کہ آ کے جوائن کیا تھا ایڈن مارکم کو اس کو بھی پھر جو ہے کافی مشکلیں ہوئی کیونکہ نکلٹن کو بھی 8 رن کے اوپر آؤٹ کیا گیا. ٹرسٹن سٹف جو ہیں انہوں نے صرف ابھی 28 بالز ہی فیس کیے تھے, ان کو محمد عباس نے 9 رنز کے اوپر آؤٹ کیا. پھر آئے ان کے سکپر ٹیمپا بورا. اس سے پہلے ڈین پیٹرسن نے جو ہے جناب پیٹرسن نے 5 وکٹیں لی پاکستان کی, کوربن بوش نے 4, مارکو جینسن نے 1, سائم ایوب اب آج کچھ کام نہیں کر سکے, 14 پہ آؤٹ ہو گئے, بابر اعظم 4 پہ, شان مسعود 17 پہ, ساؤد شکیل 14 پہ, کامران غلام نے البتہ تھوڑا سٹینڈ دیا اور 54 رنز بنائے, رضوان 27 پہ آؤٹ ہوئے, سلمان علی آگا 18, عامر جمال 28 اور نسیم شاہ ڈک پہ کے. صرف خرم اور عباس جو ہیں انہوں نے پھر جو ہے کھینچ کے سکور کو 200 سے اوپر لے کر گئے اگینسٹ ساؤتھ افریقہ. اور جو ہے پھر ساؤتھ افریقہ جو تھی اس نے الیکٹ کیا تھا ٹو فیلڈ فرسٹ. تو آپ دیکھیں گے جناب کل کیا ہوتا ہے. رافیل نڈال صاحب جو ہیں انہوں نے جنوری 2024 میں یعنی کہ اس سال کے شروع میں یہ کہا تھا کہ وہ پارٹنر کر رہے ہیں کے ایس اے کو یعنی کنگڈم آف سعودی عربیہ کو ایز برانڈ امبیسڈر آف ٹینس, اور ان کے اوپر بے تحاشا کرٹیسزم آیا تھا, لیکن انہوں نے کہا تھا جی کہ سعودی عربیہ میں آپ جدھر بھی دیکھو گروتھ ہی گروتھ, پروگرس ہی پروگرس آپ کو نظر آتا ہے, اور جو ہے یہ بالکل یہ آپ لوگوں کو کسی جگہ کا پتہ ہوتا نہیں ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. جب تک آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں گے نہیں, لوگوں سے ملیں گے نہیں, آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. تو جب آپ جائیں گے ریئل پلیسز پہ تو تبھی آپ کو ان کی ریالٹی پتہ چلتی ہے. سعودی عربیہ بہت زیادہ اسپینڈنگ کر رہا ہے ٹینس ٹورنامنٹ کے بڑھاوے کے لیے, تو انہوں نے کہا جی کہ میں ہم لوگ فری ورلڈ میں رہتے ہیں اور آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن کہنے سے پہلے وہ جگہ جو ہے وہ دیکھا کرو اور پھر بولا کرو. پاکستان کے لیے بڑی خبر یہ ہے جی کہ پاکستان ہوسٹ کرے گا دا فرسٹ ایور باکسنگ ورلڈ ٹائٹل فائٹ ان کوئٹہ ان اپریل نیکسٹ ایئر, اور اس کا اناؤنسمنٹ جو ہے پاکستان کے باکسر محمد وسیم جو کہ کوئٹہ کے ہی ہیں انہوں نے کیا ہے. اینڈ دس ایونٹ ول بی سپورٹڈ بائی مینی پیکیو پروموشنز, اور وہ کہتے ہیں جی کہ اس کی جو پریپریشن ہے ایونٹ کی فل سوئنگ میں ہے. سورسز کے مطابق یہ جو ڈیلیگیشن ہے فرام مینی کوئٹہ پروموشنز, یہ انکلوڈنگ وسیمز لانگ ٹائم کوچ ڈینی وان, یہ لوگ جو ہیں پاکستان کو وزٹ کریں گے اور اسٹیٹ آفیشلز کے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ بات چیت کریں گے, اور یہ جو ریپرزینٹیوز ہیں یہاں پہ دیکھیں گے کہ ارینجمنٹس جو ہیں کیسے کیے جا رہے ہیں ٹو ہولڈ دس ہسٹورک ایونٹ. سو دس از بگ 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 نیوز فار پاکستان. اینڈ جناب ایبسلیوٹلی اور لاسٹ نیوز یہ ہے اباؤٹ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ جہاں پہ کہ انڈیا اور آسٹریلیا کے میچز ہو رہے تھے. ٹینس کانفرنٹریشن جو ہے وہ یہاں پہ پھر شروع ہو گئی, حالانکہ یہ باکسنگ ڈے تھا, باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ چل رہا تھا بٹوین انڈیا اینڈ آسٹریلیا, لیکن یہاں پہ پرو انڈین اور خالستانی سپورٹرز دونوں ہی آگے. کہا جا رہا ہے کہ الیجلی جو خالستانی سپورٹرز ہیں وہ پریمسز میں وداؤٹ ٹکٹس آئے اور انہوں نے اینٹی انڈیا سلوگن جو ہے وہ لینا شروع کیا, اور ان کے پھر بیچ میں بہت زیادہ سپیٹ ہوا پرو خالستانی اور انڈین فینس کے بیچ میں, لیکن انڈین فینس نے کہا کہ اس کو زیادہ بڑھاوا نہ دو کیونکہ یہ 5-10 لوگ ہی ہیں, ان کو لائم لائٹ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے, جھگڑا لڑائی مت کرو, پیچھے ہٹو, کیونکہ یہ تو پنجاب وجاب تو جاتے نہیں ہیں, یہ تو یہیں پہ رہتے ہیں, اور یہ جو ہے بالکل نان سینس ہے جو یہ کہتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہندوستان اب کتنا بدل گیا ہے. لیکن ظاہر ہے جب جھگڑا ہوا تو سوشل میڈیا پہ آیا اور کہانی بنی ہے جی. تو جیشان کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟
ایک اور کہانیاں تو بنتی ہیں, ایک اور کہانی بنی تھی, لیکن اس کہانی سے پہلے جو ہے جو آپ نے جس ٹیسٹ میچ کی بات کی ہے, ریکارڈ بریکنگ اٹینڈنس نوٹ کی گئی میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں فرسٹ ٹیسٹ.
اچھا,
ٹو بی پریسائز 87,242 لوگ جو ہے وہاں پہ موجود تھے.
اچھا,
اور جب میچ سے پہلے پریس کانفرنس ہو اور جو میلبرن کرکٹ گراؤنڈ کے جو سی او ہیں تو آپ کو پتا ہے الٹے سیدھے سوالات پوچھتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم 2.5 لاکھ بندہ جو ہے گیٹ کے تھرو ہم گزار سکتے ہیں, تو یہ جو والیوم دیکھ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک ریکارڈ بریکنگ جو اٹینڈنس ہے وہ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں دیکھی گئی باکسنگ ڈے پر ڈے فرسٹ میں, تو اٹس اے ہیوج نمبر فور دا ٹیسٹ میچ کے لیے. وراٹ کوہلی کی بدبختی ہے,
ہاں بےچارہ, مائی گاڈ, پتہ نہیں کس کی گندی نظر لگی ہے میرے فیوریٹ کرکٹر کو.
اچھا,
آئی لو کوہلی.
ایک نئی ویڈیو دیکھتے ہیں, یہ صبح سے جو ہے نا بہت چلتی
وائرل ہو رہی ہے,
ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اور میں بھی شاکنگ تھا, اور جو دنیا کرکٹ کے جو مائناس کمنٹیٹرس ہیں یا جو ایکسپرٹس ہیں لیجنڈری, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وراٹ کوہلی کی طرف سے یہ گیسچر جو ہے بالکل انایکسپٹیبل ہے, کیونکہ وراٹ کوہلی ظاہر بات بہت بڑا کھلاڑی ہے, اور اس کے خلاف جو جس نے یہ آپ نے نیوز دی تھی جو بٹینٹ جو کیا اس کو جو ہے فزیکل ہونا آن دا فیلڈ, تو ویڈیو جو ہمارا ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وراٹ کوہلی نے جو ہے ان کو یہ ٹکر ماری اور دیکھ سکتے
ہیں بچہ جو ہے ینگ کا بچہ اور پہلا وہ کھیل رہا ہے
جی وہ بالکل دیکھیں بال اٹھائی اور وہ بالکل کراس میں جو ہے ان کے آئے اور انہوں نے ٹکر ماری اور پھر فزیکل ہوئے اور ان کے درمیان جو ہے کچھ تلخلامی بھی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے امپائر بھی اس میں انوالو ہوئے یہ دیکھیں انہوں نے گول بال پہ پک کیا اور یہ بالکل کراس آ رہے ہیں ٹوورڈز دی بیسمنٹ اور یہ انہوں نے یہاں سے ٹکر لیا تو ایک تھوڑا سا جو ہے دل دکھانے والا انسیڈنٹ ہوا کل
پتہ نہیں کیا ہو گیا وراٹ کوہلی کو کھیل بھی نہیں رہا حالانکہ کوہلی بڑا جینٹل مین ہے ایسی حرکتیں کرتا نہیں ہے
جی جی از لائک بہت بڑا نام ہے کرکٹ دنیا کرکٹ کا آج کی تاریخ میں
یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں اس کو کرنی چاہیے
اس طرح کا جو گیسچر ہے وہ اس بڑے پلیئر کی طرف سے اگر ہو جائے تو وہ جو میرے لیے جو ہے بہت تشویشناک تھا تو خیر
اچھا اب یہ تو اب آپ اس کو جسٹر نہیں بول سکتے اس کو تو یہ تو اب پراپر جو ہے اس نے مجھے لگتا ہے پنگا لینے کی کوشش کی ہے
جی جی اس میں ہوا یہ تھا کہ یہ تھوڑی سی ہٹنگ کر رہے
ہیں
عمرہ کو جو ہے دو چھکے اور چوکے لگے تو اس میں تھوڑا سا جو ہو سکتا ہے کہ اور اسی وجہ سے ان کا جو یہ بیہیویئر رہا اسی وجہ سے ان کو کیپٹنسی سے بھی جو ہے ہاتھ دھونا پڑا تھا
تھوڑا سا اگریسو ہے
اگریسو ہے جی تو بس یہ دو نیوز تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تو یہ تھی ہماری نیوز
ہاں جی ہاں جی مگر بڑا پرومسنگ ہے یہ لگتا کانسٹاس زبردست
19
ایئرز وہی ہم کل جو خبر بتا رہے تھے نا کہ یہ چوتھا ینگسٹ ہے آسٹریلیا کی ہسٹری کے اندر کیونکہ اس سے ینگ بچے آتے نہیں ہیں اس کے اندر
اچھا چلیے بہت بہت شکریہ
تھینک یو
ساری نیوز کا آپ تمام سب کا شکریہ جو ہمارے ساتھ رہے یہ آسٹریلیا پر ریڈیو 770 AM اور ڈائل پر 6478724900 ہماری ویب سائٹ eawaz.com جہاں پر آپ انگلش میں اردو میں نیوز پڑھ سکتے ہیں اور ہمارا ٹی وی دیکھ سکتے ہیں ایواز ٹی وی اور ہمارا ریڈیو سن سکتے ہیں 24 گھنٹے شہزاد جی کی طرف سے ہمارے انجینئر نودیپ گل کی طرف سے میں ذیشان احمد میری طرف سے اور ہماری پوری مینجمنٹ کی ٹیم آپ کو مظفر صاحبہ اور ماجد جمال کی طرف سے اللہ حافظ انشاءاللہ کل ملنے کی آج تک تب تک کے لیے السلام علیکم
شام و صبح اس سے زیادہ تجھے اور چاہوں تو کیا, تیرے ہی خیالوں میں ڈوبا رہا اس سے زیادہ تجھے اور چاہوں تو کیا. بس سارے غم میں جانا سنگ ہوں تیرے, ہر ایک موسم میں جانا سنگ ہوں تیرے, اب اتنے امتحاں بھی نہ لے